नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली मेट्रो परियोजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 16 किलोमीटर की लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लापता लोगों के मामलों से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 12 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनों को व्यवस्थित और भूमिगत करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी सिम पोर्टिंग और बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने मेट्रो परियोजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 16 किलोमीटर की लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 13 नए मेट्रो स्टेशन निर्माण किए जाएंगे। इस परियोजना में दिल्ली सरकार का बजटीय हिस्सा 2000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को वर्ष 2028 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट।
इन कॉरिडोर में आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ जो सेंट्रल विस्टा के रास्ते जाएगा, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और एरो सिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल 1 शामिल है। इसमें कुल 13 स्टेशनों में से 10 स्टेशन अंडरग्राउंड और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। यह विस्तार मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ इंटरचेंज की सुविधा प्रदान करेगा और हवाई अड्डे, वाणिज्यिक केंद्रों तथा आवासीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर नागरिकों को स्वच्छ, कुशल और एकीकृत परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो। इसके साथ ही यातायात पर दबाव कम होगा और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि मैजेंटा लाइन सबसे लंबा दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर बनेगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरचेंज और अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली मेट्रो ने बताया कि चौथे चरण के कॉरिडोर निर्माण के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर मैजेंटा लाइन के एक्सटेंशन के तौर पर लागू किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद मैजेंटा लाइन यानी बोटानिकल गार्डन से इंद्रलोक तक की कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर होगी। ये लाइन बोटानिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलेगी और चालू होने के बाद पूरी तरह से चालक रहित मेट्रो कॉरिडोर के रूप में काम करेगी। निर्माण पूरा होने के बाद बोटेनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक मैजेंटा लाइन में 65 स्टेशन होंगे, जिनमें 40 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इस निर्माण के बाद दिल्ली और आसपास के राज्यों से आवाजाही बेहतर होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में लापता लोगों के मामलों से संबंधित एक जनहित याचिका पर आज दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि दिल्ली में लापता लोगों के मुद्दे पर वर्तमान में मीडिया में 2 विरोधाभासी बातें चल रही हैं। न्यायालय ने कहा कि वह अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद तथ्यात्मक स्थिति की जांच करेगा। याचिका की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। एक रिपोर्ट।
न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले का स्वतः संज्ञान लेने और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश देने के तुरंत बाद ये आदेश दिए हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने लापता बच्चों के मामले अचानक बढ़ने की खबरों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने लापता लोगों के मामलों को भी खारिज करते हुए कहा कि आधिकारिक आंकड़े एक दशक से लगभग स्थिर बने हुए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि जब युवा नागरिक लोकतंत्र की जीवंत संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं तो वे न केवल इतिहास सीखते हैं बल्कि राष्ट्र की निरंतर संवैधानिक यात्रा का हिस्सा भी बनते हैं। ये बात उन्होंने दिल्ली विधानसभा में माय भारत केंद्र द्वारा आयोजित 17वें जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम में कही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय विकास की नींव संवैधानिक जागरूकता, सामाजिक एकजुटता और सूचित भागीदारी पर टिकी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के भ्रमण से प्रतिभागियों को अपने अपने क्षेत्रों में शासन, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व में सार्थक योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी। इस संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे जिलों के लगभग 200 जनजातीय युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विधानसभा सदन का भ्रमण भी कराया गया, जहां उन्होंने इस सदन की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसके विकास से अवगत कराया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को आज 12 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सहयोग राशि दिल्ली के 857 स्कूलों के विद्यार्थियों को दी गई है। ये आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए अंत्योदय के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
एक साल में जिस तरीके से हमारे श्रम मंत्रालय ने उन श्रमिकों की देखरेख की, उनके लिए योजनाओं पे क्रियान्वयन किया, उसका सुखद परिणाम हमें दिख रहा है। लखपति बिटिया का लाभ भी हमारे इन मजदूर परिवारों को मिल पाएगा। और हमने ग्रैप पीरियड में जो 10,000 रुपए की सहायता राशि मजदूर भाई बहनों के अकाउंट में पहुंचाई, 500 पालना केंद्र जो हमारी वो परिवार जो बहनें मजदूरी के लिए जाती हैं या अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहां छोड़े उनको ये चिंता उन्हें सताती थी, आज सरकार के वो 500 पालना केंद्र उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनों को व्यवस्थित और भूमिगत करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस पूरे काम पर अब तक लगभग 463 करोड़ रुपए की धनराशि की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। श्री सूद ने बताया कि लाइनों के व्यवस्थित से संबंधित 13 प्रस्तावों के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
इन कार्यों के पूर्ण होने से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में असुरक्षित बिजली के तारों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध होगा। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए दिल्ली पावर सिस्टम का एक व्यापक मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिसे सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वय से लागू किया जाएगा। इस रोड मैप के तहत लगभग 17,000 करोड़ का पूंजी निवेश अगले 3 वर्षों में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और डिस्कॉम के माध्यम से किया जाएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अर्जुन शर्मा।
दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश वर्मा ने आज आईटीओ क्षेत्र में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस इलाके में एक नाला है और उसके बीच की दीवार टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दीवार को फिर से बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत के लिए वे नगर निगम के उपायुक्त से बात करेंगे। इसके अलावा कई इलाकों में सड़क पर गड्ढों को भरने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
हमने अधिकारियों को बोला है कि सारे अभी जो घटना हुई है पीछे, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए अधिकारी सारे मौके पर जाएं और हम लोग भी मौके पर जा रहे हैं। मगर ये बात भी ठीक है कि अधिकारी तभी जागते हैं जब हम वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं, और अधिकारियों ने जो काम मैं समझता हूँ बहुत सारे हफ्तों में नहीं हुआ वो उन्होंने एक ही दिन में कर दिया। तो काम तो हो सकता है मगर अधिकारियों को पूरा सिस्टम जैसे चला आ रहा था पूरे सिस्टम को सुधारने की हमारी कोशिश है दिन रात और हम उसमें कामयाब।
दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज निगमबोध घाट, कहो गली, चांदनी चौक, टाउन हॉल और सिविल लाइंस रिज क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री खिरवार ने संबंधित अधिकारियों को टाउन हॉल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देखने और विरासत संरचना के बेहतर इस्तेमाल की संभावना देखने के लिए निर्देश दिए। साथ ही कई मुद्दों के तुरंत समाधान, सफाई और रखरखाव को मजबूत करने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक फर्जी सिम पोर्टिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी सिम पोर्टिंग, शिकायतकर्ता के मोबाइल और बैंकिंग एप्लीकेशन की जानकारी तथा बैंक खाते से पैसे निकालने में शामिल था। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने 38 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने बताया कि ये गिरोह इंस्टाग्राम विज्ञापन के जरिए लोगों को कमीशन के आधार पर अपने बैंक अकाउंट और सिम कार्ड किराए पर देने का लालच देते थे। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार इस आरोपी के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने बताया कि आरोपी सहायक उप निरीक्षक ने जमीन का झगड़ा निपटाने के लिए शिकायत करने वाले से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और भरोसा दिलाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय कल से 14 तारीख तक साहित्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार 3 दिवसीय इस महोत्सव में हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत कवि सम्मेलन, भजन कार्यक्रम और जनजातीय तथा लोक नृत्य की प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस महोत्सव के दौरान पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 50 से अधिक वक्ताओं के भाग लेने की आशा है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 39वां संस्करण पूरे उत्साह और उमंग के साथ जारी है। देश विदेश के पर्यटक मेले की बहुसांस्कृतिक विरासत और जीवंत माहौल का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। मेले में आए लोगों के चेहरे पर उत्साह, जिज्ञासा और खुशी साफ झलक दिखाई दे रही है। आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव में विभिन्न राज्यों तथा देशों की पारंपरिक कलाएं, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। ये मेला 31 जनवरी से शुरू हुआ था और इस रविवार तक चलेगा। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्रों में गलतियों को सुधारने का अवसर दे रहा है। इस दौरान उम्मीदवार 3 दिन के भीतर सामान्य आवेदन पत्र तथा परीक्षा आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। यूपीएससी ने कहा है कि 3 दिवसीय सुधार सुविधा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद खुलेगी। सुधारों की सटीक तिथियों और दायरे के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर समय आने पर अधिसूचित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवारत अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित करने के लिए परिवार की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दे दी है। संशोधित परिभाषा में पति, पत्नी और आश्रित बच्चों या सौतेले बच्चों के मौजूदा दायरे के अतिरिक्त माता पिता, आश्रित भाई बहन और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी इस शुक्रवार को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनः कल्पना। यह विषय देश के विकास पथ में सशक्त, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार सांख्यिकी प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। भारत और नामीबिया के बीच कल अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होगा। रेल निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कल मेट्रो सेवा देर रात तक संचालित होगी। सामान्य दिनों में मेट्रो की आखिरी ट्रेनें रात 11 बजे से 11:30 बजे तक के आसपास चलती हैं, लेकिन मैच के दिन मेट्रो देर रात तक उपलब्ध रहेंगी। दिल्ली में दिन भर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो परियोजना के 5वें चरण के अंतर्गत 16 किलोमीटर की लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लापता लोगों के मामलों से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को 12 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हाई टेंशन और लो टेंशन बिजली लाइनों को व्यवस्थित और भूमिगत करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी सिम पोर्टिंग और बैंक धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।